इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। देने का अनुग्रह। अनुग्रह परमेश्वर की भलाई उनके लिए जो इसके लायक नहीं है। इस सुबह आज मैं अनुग्रह के बारे में बात करना चाहता हूं। अनुग्रह को साधारण शब्दों में परमेश्वर की भलाई कहा जाता है, लेकिन विशेष तौर पर भलाई उनके लिए जो इस लायक नहीं है कि उनके साथ भलाई की जाए। बाइबल की अनुग्रह के बारे में शिक्षा की व्याख्या करने के लिए हम इस कथन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अनार्जित या आशीष या अनार्जित क्रिया। परमेश्वर का अनुग्रह जो बचाता है, एक तरफ हम परमेश्वर के अनुग्रह जो बचाता है के बारे में जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, जो प्रचार किया जाता है हम उसे सुनते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी बात के योग्य नहीं हैं, अगर मैं हैं तो सिर्फ न्याय और नरक के। फिर भी हम सोचते हैं कि परमेश्वर अपनी भलाई में हमारे साथ अनुग्रह पूर्वक व्यवहार करता है और हमें बचाता है। हम कुछ वचनों के साथ लिपटे रहते हैं, जैसे कि इफिसियों 2:8-9, अनुग्रह सी ही तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के जरिए, ना कि अपने आप से। यह परमेश्वर का उपहार है, यह कार्यों का परिणाम नहीं है कि कोई घमंड करे। परमेश्वर का अनुग्रह जो बनाए रखता है अपरिचित। हम लोग परमेश्वर से बचाने वाले अनुग्रह की शिक्षा के बारे में परिचित हैं, लेकिन हम परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह की शिक्षा के साथ ज्यादा परिचित नहीं है। मुझे हर पल आपकी जरूरत है वाला अनुग्रह। आप जानते हैं कि आप और मैं मसीह में आने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह के जरूरतमंद हैं। परमेश्वर द्वारा बचा लिए जाने के तुरंत बाद हम एकदम से लायक नहीं बन जाते। हम अपने जीवन को संभालने लायक एकदम से नहीं बन जाते, लेकिन हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए हर मिनट के हर सेकंड में, हर घंटे के हर मिनट में और हर दिन के हर घंटे में। परमेश्वर अपनी भलाई में लगातार हमारे साथ बनाए रखने वाले अनुग्रह के साथ व्यवहार करता है। वह अपने बचाए रखने वाले अनुग्रह से हमें संभालता है और हमारी मदद करता है और हम अपना जीवन पवित्रता में बिता सकें। यह उसका बनाए रखने वाला अनुग्रह ही है। वो हमें 70 × 7 माफ कर देता है जबकि हम असफल होते हैं। परमेश्वर का बचाए जाने वाला और बनाए रखने वाला अनुग्रह आपस में जुड़े हुए हैं। 1 Corinthians 15:10 में हम देखते हैं, परंतु मैं जो कुछ हूं परमेश्वर का बचाने वाला अनुग्रह जिसे पॉलस ने अपने जीवन में अनुभव किया, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसका बचाने वाला अनुग्रह, वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सब से अर्थात दूसरे प्रेरितों से बढ़कर परिश्रम भी किया है, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर का बनाए रखने वाला अनुग्रह जो मुझ पर था। परमेश्वर के अनुग्रह से पॉलस कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं वह परमेश्वर के लगातार मेरे जीवन में चलने वाले अनुग्रह की वजह से ही हूं। कुछ भाग जैसे कि 2:11 में वह कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रगट है और सब मनुष्यों को उद्धार का कारण है। हम सब निकम्मे पापी हैं, उद्धार का एक ही मार्ग है और वो है परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए जो कि हमारे साथ भलाई का व्यवहार करता है, हालांकि हम उसके योग्य नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रगट हुआ है जो कि सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, परंतु वह हमें तैयार करता है कि हम अभक्ति संसारिक अभिलाषाओं को त्याग दें और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिताएं। यह है परमेश्वर का बनाए रखने वाला अनुग्रह, क्या यह नहीं है? जो अनुग्रह हमें हर दिन चाहिए ताकि हम इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिता सकें, वो है परमेश्वर का अनुग्रह जो के बचाता है, जो बनाए रखता है। उसकी भलाई उनको दिखाई गई है जो इसके योग्य नहीं है और कई बार छुटकारा पाए हुए पापियों को। बचाए रखने वाला अनुग्रह सोचने का विलक्षण तरीका है, संस्कृति से अलग। मैंने देखा है कि बचाने वाला अनुग्रह सचमुच सोचने का विलक्षण तरीका है, लेकिन यह संस्कृति से एकदम अलग सोचने का तरीका है। मैं सोचता हूं हम सब की, कम से कम मेरी तो है ही, कि हम जीवन में पैबंद लगे राजियाई के समान समझते हैं। मैं उस अलंकार को जोड़ रहा हूं क्योंकि रजाई में एक वर्ग में हम परमेश्वर के बचाए जाने वाले अनुग्रह की जरूरत महसूस करते हैं और हम जानते हैं कि उस छोटे से वर्ग में परमेश्वर अनुग्रह के बिना और उसकी भलाई के बिना मैं नरक में जा गिरूंगा। हम समझते हैं कि उसकी उस पैबंद लगाई रजाई वाली जिंदगी में हम उस छोटे से वर्ग में ही हमारी जिंदगी है, लेकिन समस्या यह है कि हम बाकी अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह के बिना उन्हीं वर्गों में बिताते हैं, चाहे वो वर्ग हमारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो व्यक्तिगत समय हो कंप्यूटर के सामने जब हमें कोई देख नहीं रहा, जहां फिर आप सब जानते हैं हमारे जीवन के अलग अलग वर्ग। मैं सोचता हूं कि एक मनोधारणा है जो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपना बनाए रखने वाला अनुग्रह हमसे अलग कर ले तो हम उसी स्थान पर चूर चूर हो जाएंगे। कोई अर्थ नहीं कि हम कितने मजबूत हैं, कितने हाजिर जवाब हैं, कितने चलाक हैं, हम नहीं बच सकते। हमें परमेश्वर के बचाए रखने वाले और लगातार जारी रखने वाले अनुग्रह की अत्यंत जरूरत है। मैं सोचता हूं कि हमसे बढ़कर मिशनरी इस बात को ज्यादा समझते हैं, जैसे कि वह दार और कांटे में जीवन बिताते हैं। आज सुबह प्रार्थना के समय में ही हमें याद दिलाया गया, हम में से कुछ लोग सुबह 8:30 बजे प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। एक महिला आई, मैं व्याख्या कर रहा था कि मैं क्या प्रचार करने वाला हूं, और मैंने उसके चेहरे को व्याख्या के दौरान देखा और कहा, क्या विशेष है? उसने कहा, कल रात पुलिस मेरे शराब पिए हुए बेटे को मतवालेपन की हालात में ले गई है और हमें नहीं पता कि अब हम क्या करें, उन्हें परमेश्वर का बनाए रखने वाला अनुग्रह चाहिए। मैं एक और जवान के बारे में याद करता हूं जिसकी शराब के कारण दुर्घटना हो गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने बनाए रखने वाले अनुग्रह से उसकी सीट बेल्ट लगवाई कि वो मरने से बच गया। इन लोगों को देखें तो ये समझते हैं कि जीवन के हर एक वर्ग में परमेश्वर के बनाए रखने वाले अनुग्रह की जरूरत होती है। इसलिए पौलुस अपने कई पत्रों का अंत इन शब्दों के साथ करता है कि अनुग्रह तुम्हारे साथ बना रहे। वो उसे अलविदा नहीं कहता है, वह कह रहा है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है और तुम्हारी यह तुम्हारे साथ बना रहे। इसलिए जॉन पाइपर ने एक पुस्तक लिख दी, भविष्य का अनुग्रह। यह अजीब शीर्षक था जब मैंने पहली बार इसे देखा, लेकिन यह पुस्तक जॉन पाइपर के बारे में है जिन्होंने उसे लिखा है कि वो परमेश्वर का धन्यवादी है भूतकाल में मिले उसके बचाने वाले अनुग्रह के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं कि उसने मुझे भूतकाल में बचाए रखा, लेकिन क्या आप जानते हैं मेरा अर्थ यह नहीं है। मेरा अर्थ है कि वो अनुग्रह जो मुझ पर आने वाले हर मिनट में, हर घंटे में, हर दिन में और सालों में बनाए रखेगा जब तक कि मैं जीवन का अंत नहीं होगा। ये वो अनुग्रह है जो मुझे भविष्य में स्वर्ग जाने के लिए तैयार करेगा। मुझे चाहिए भविष्य का अनुग्रह, बनाए रखने वाला अनुग्रह। एक तरह से परमेश्वर अपना अनुग्रह आर्थिक आशीष देने में भी दिखाता है। ये सब अनुग्रह के बारे में क्यों बताते हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे प्रति आर्थिक आशीषें देने में भी दिखाता है। हाँ, ये उन उपदेशों में से एक है। नए नियम में मुख्य भाग जो देने के बारे में बताया जाता है वह 2 कुरिन्थियों 8:9 है। पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अंत में था और वह लंबे समय से अन्य जातियों कलीसियाओं के लिए भेंट इकट्ठी कर रहा था और वे इसे ले जाकर यरूशलम की यहूदी कलीसिया को उनकी जरूरत के समय देना चाहता था। वो क्या कर रहा है कि 2 कुरिन्थियों 8:9 में वह कुरिन्थ की कलीसिया की भेंट के लिए उत्साहित कर रहा है। वह उन्हें उत्साहित कर रहा है कि मकदूनिया की कलीसिया का उदाहरण देकर, जिन्होंने पहले से ही भेंट देकर मदद की थी। प्रमुख विचार जहां अनुग्रह का है, देने का अनुग्रह जो प्रमुख विचार इन 2 अध्यायों में चलता है, वो अनुग्रह के बारे में है। मैं चाहता हूं आप इसे सुने। 2 कुरिन्थियों 8:9 में प्रमुख विचार ये नहीं है कि मुझे आपका पैसा चाहिए। प्रमुख विचार जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए संदेश का शीर्षक है देने का अनुग्रह। अगर आज की सुबह आप कुछ सुनते हैं जो पौलुस हमें सिखा रहा है कि देना प्रभु का अनुग्रह है, जो कि अयोग्य पापियों को इस संसार के भौतिकवाद से देने के छुटकारा, ताकि हम खुले मन और प्रसन्न मन से देना परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है। हम कितना रक्षात्मक तरीके से धन संपत्ति और देने के बारे में पहुंच बनाते हैं। कई सप्ताह पहले पास्टरों की एक सभा में रैंडी अलकॉर ने कहा कि असल में जितना उसने अपने पैसे के बारे में बात की है, वह अपनी पुस्तिका खजाने के सिद्धांत में उसे लिखता है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप एक प्रति लेकर जरूर पढ़ें। जो सचमुच अच्छी बातों वाली पुस्तिका है, जो बताना शुरू करते हैं कि अक्सर जब हम धन संपत्ति के देने के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत ही क्षमा याचना होते हैं जुबान और गालों पर। रैंडी इस प्रकार शुरू करते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आज आपसे व्यभिचार के विषय में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये व्यभिचार सप्ताह है और व्यभिचार सभा चाहती है कि मैं इस विषय पर साल में एक बार प्रचार जरूर करूं। अब मैं उनसे क्षमा चाहता हूं जो व्यभिचार में पकड़े गए हैं। इस बार आप इसे जेल लें, मैं वायदा करता हूं अगले साल व्यभिचार सप्ताह तक मैं दोबारा इस विषय पर बात नहीं करूंगा। ये बात वो 1000 पास्टर्स कह रहे थे जिन्होंने साल में एक दो बार इस विषय पर रीति से क्षमा याचना के साथ प्रचार किया है। ठीक है, भंडारीपन का सप्ताह है और भंडारी सभा मुझसे चाहती है मैं इस पर प्रचार करूं। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो मुझे खेद है इसलिए, लेकिन मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। और हम अक्सर ऐसा ही करते हैं या नहीं, आप जानते हैं। हम इसके बारे में हंस सकते हैं, लेकिन नया नियम 15% बाघ धन और संपत्ति के बारे में बताता है। मुझे नहीं लगता कि यह धन और संपत्ति विषय को छोड़कर किसी और के बारे में इतना बात करता है या नहीं। नए नियम में इस विषय में श्रृंखला बाइबल की 52 मुख्य घटनाओं में इसको तुच्छ समझना बेमानी होगी। आखिर ये आपकी गलती है, आप ही हैं जिन्होंने मुझसे संपूर्ण समाचार प्रचार करने के लिए कहा है। इसलिए जहां पर बिना खेद जताए मैं जाना चाहता हूं। 8:1 के साथ मंच तैयार करता है। 2 कुरिन्थियों 8:1 में पौलुस मंच तैयार करता है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनियों की कलीसिया पर हुआ है। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं तुम परमेश्वर के उस अनुग्रह को जानो जो मकदूनिया की कलीसिया में है। मैं चाहता हूं तुम परमेश्वर के अनुग्रह के उस वरदान को जानो जो अयोग्य पापियों पर हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के उस अनुग्रह के वरदान के बारे में जानो जिससे मकदूनिया के विश्वासी आर्थिक मदद लेने योग्य बन गए हैं। जब वह अनुग्रह की बात करता है तो वो उनके मदद देने की बात करता है, और असल में यूनानी भाषा में वरदान और अनुग्रह एक ही मूल शब्द है। उन्होंने इनका आपसी संबंध देखा होगा कि देना तो परमेश्वर का अयोग्य पापियों के लिए वरदान है, जो कि हमें इस संसार के भौतिकवाद के खुले हृदय और खुशी से देने के लिए बुलाकर छुटकारा दिलाता है। 8:2-4 के क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और बारीक कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वर्ण अपनी सामर्थ्य से भी बाहरी मन से दिया, और उस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में बागी होने के अनुग्रह के विषय में हमने बार बार विनती की। मकदूनिया के मसीही विश्वासी बहुत परीक्षा में से निकल रहे थे कि वे वास्तव में उदार पाए हुए हैं या नहीं। मकदूनिया के मसीही विश्वासियों की परीक्षा हो रही थी कि वे वास्तव में उदार पाए हुए हैं या नहीं। उनकी परीक्षा उनके दुखों के साथ हो रही थी। वे अपने विश्वास के लिए बुरी तरह से सताए जा रहे थे। आप इसके बारे में मकदूनिया की कलीसिया के नाम इन्हीं पत्रियों में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि फिलिपियों की पत्री, या फिर आप इसके बारे में प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं जो वो अनुभव कर रहे थे। और पौलुस भी कहता है वो हमारे लिए भी सत्य, अगर कोई धर्म का जीवन बिताना चाहे तो वह सताया जाएगा। 2 कुरिन्थियों 3:12 और उनके दुख कि ये कैसे उस ताव का प्रतिउत्तर देते हैं, ये उनके विश्वास की परीक्षा है। परीक्षा में पास हुए उनके कार्यों के द्वारा सिद्ध हुआ कि उनका विश्वास असली है। पौलुस इस बात को जारी रखता है कि मकदूनिया के विश्वासियों का विश्वास खरा निकला है। उन्होंने अपने कार्यों से इस बात को प्रमाणित कर दिया कि उनका विश्वास असली है। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर का बचाने वाला और बनाए रखने वाला अनुग्रह उनके मध्य में था। उन्होंने इसे 2 बातों से साबित किया। पहली बात कि परमेश्वर के बचाने वाले और बनाए रखने वाले अनुग्रह की उपस्थिति उन्हें आनंद से साबित होती है। यह स्वास्थ्य और संपत्ति नामक कचरा धर्म सिद्धांत के अनुसार नहीं है। यह आनंद दुखों और सताव के दौरान ही मिलता है, और ऐसा आनंद शायद ही हम में से किसी ने कभी देखा हो, लेकिन वे परीक्षा में से पास हुए। उन्होंने साबित किया कि उनका विश्वास खरा है। जे उनका दान देने के द्वारा भी साबित हुआ। उदारता के धन में से उमड़ता हुआ आप मकदूनिया के लोगों का आनंद देखें, वह आनंद जो उनके देने से आया, यह सिर्फ परमेश्वर के बचाने और बनाए रखने वाले अनुग्रह की वजह से ही देखने को मिलता है। मिशनरियों का आनंद वह आनंद जो निर्णय करने में आता है, परंतु इस संसार के अनुसार मूर्खता है, और इसे सिर्फ इस बात से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवनों में परमेश्वर के बचाए रखने वाले और बनाए रखने वाले अनुग्रह को अपने जीवनों में देखा। सिर्फ यही एक चीज है जो इस प्रकार के निर्णय को समझा सकती है और कुछ नहीं। मकदूनिया के लोगों ने उदार को सत्य साबित किया अपने आनंद और अपने दान देने के द्वारा, और हमें इस बात से हैरान नहीं होना चाहिए जो पौलुस क्रिंथ के लोगों को और हमें बता रहा है। जब आप इसे आगे पढ़ते हैं तो यह हैरानी के रूप में नहीं आना चाहिए। जो पौलुस क्रिंथ के लोगों को बताना चाहता है कि उनके जरिए आपको और मुझे बता रहा है कि हमें अपने विश्वास की सत्यता को साबित करना चाहिए। आप वचन 7 और 8 में इस बात को देखें, वैसे ही तुम दान के कार्य में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। इसे साबित करो। यही विचार वचन 24 में भी आता है, अंततः अपना प्रेम और हमारा घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। अभी मैं इस बात का अनुमान लगा सकता हूं कि हम में से कुछ के मन उथल पुथल हो रहे हैं, और उथल पुथल ये है कि किसी को साबित करने के लिए मुझे क्या जरूरत है। सही, ये तो मेरा कार्य है, मेरा दान देना गुप्त में ही है। यह प्रतिक्रिया एक पापी और व्यक्ति परक और कठोर संस्कृति की है। यही से तो वह सब आता है। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उदार हृदय और आनंद पूर्वक देने से साबित करता है। दिखाओ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में कार्यरत है। हमारा देना परमेश्वर के बचाने और बनाए रखने वाले अनुग्रह का परिमाण है, और यही एक चीज है जो हमें इस पदार्थवादी संसार से मुक्ति दिला सकती है। इस बात को थोड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए पौलुस हमें प्रभु यीशु के होंठों से यूहन्ना 15:8 में निकले उस सिद्धांत का हवाला देता है, मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है कि तुम बहुतायत का फल लाओ और मेरे चेले होने का प्रमाण दो। यही तो यीशु मसीह कहते हैं। एक विशेष फल जो पौलुस करिन्थ के लोगों और आपसे और मुझसे पाना चाहता है वह है दान का फल। वे उतनी उदारता से कैसे दे सकते थे, 8:5, वे इतनी उदारता से दान देते थे कैसे, जे लोग जो कि इतनी परेशानियों सताव और गरीबी में थे फिर भी इतनी उदारता से कैसे दान देते थे। मेरे दिमाग में अभी अभी एक जवान का ख्याल आया जो कि इथियोपिया से आया है, और उसने अपनी मातृ कलीसिया का एक वीडियो मुझे दिखाया। इस वीडियो में एक कमरा है जो कि इस कमरे की तुलना में बहुत छोटा है, और उसमें बहुत सारे इथियोपिया के विश्वासी आनंद के साथ उछल कूद रहे हैं, और हम उनमें से 3,000 को इस नई इमारत में रख सकते हैं। इस प्रकार के आनंद की क्या व्याख्या है। मकदुनिया के विश्वासियों ने सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है। वो कैसे अपने आप को और अपने धन को इतनी उदारता से परमेश्वर को दे पाए। पौलुस वचन 5 में हमें बताता है, और जैसे ही हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वर्न उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को दे दिया। मकदुनिया के लोगों ने सर्वप्रथम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया। वे परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह को समझ गए। वे समझ गए कि उनको नलायक होने के बावजूद भी जीवन का वरदान दिया गया है। इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य थे, बल्कि इसलिए दिया गया क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। और असल में इस बात ने उन्हें बदल दिया। असल में इस बात ने उनकी पदार्थवादी दुनिया के बंधनों को तोड़ दिया और उन्हें परमेश्वर के लिए उदार हृदय देने से योग्य बनाया। इसलिए देना एक अनुग्रह का कार्य है, वचन 1। इसलिए देना एक उदारता का कार्य है। इस पूरे सप्ताह में यह सैद्धांतिक संघर्ष रहा है कि कैसे पौलुस वचन 1 में से परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे देने के तथ्य तक कैसे पहुंच गया। यह देने का कार्य परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में वचन 7 में दोहराया गया है। वहां पर वह कहता है कि हमें इस अनुग्रह के कार्य से सिद्ध होना है। यह फिर से वचन 19 में आता है, हम अनुग्रह के इस कार्य को जारी रखते हैं जो कि हमारे द्वारा सेवा के रूप में किया जाता है, जो स्वयं प्रभु की द्वारा महिमा के लिए होता है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में से हमारे देने के पास कैसे आते हैं। जब एक कदम आप पीछे हटकर इसके बारे में सोचेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमें देने से इच्छुक बनाता है, और फिर वह आगे बढ़ता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें देने के योग्य बनाता है। उसका अनुग्रह हमें बचाता है, उसका अनुग्रह हमें बदलता है, उसका अनुग्रह हमारे लगाव बदलता है, उसका अनुग्रह हमारे देने को बदलता है, क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो हमें धन कमाने के योग्य बनाता है। अध्याय 9:8-10 को देखें, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये है देने का अनुग्रह। वचन 10, अंततः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, और वह हमें बीजने के लिए बीज देगा। असल में वह बीज को बढ़ाता है ताकि हमारे पास बीजने के लिए बहुतायत से हो, और हमारे पास इस कलीसिया में भी है। क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं है, और परमेश्वर उस बीज को भी बढ़ाता है ताकि हमारे पास बहुतायत की रोटी हो। मकदुनिया के विश्वासी इस बात को समझ गए कि परमेश्वर देने वाला दाता और बहुतायत से देता है। वह बीजने में भी देता और कटनी में भी देता है। ये सब उसके अनुग्रह हैं। वह हमें इस पदार्थवादी संसार के पंजों से छुड़ा सकता है ताकि हम इस पदार्थवाद के प्रेम जाल में फंसकर असफलता में न मर जाएं। इसलिए वह हमें हर दिन योग्य बनाता है हमारे जीवन रूपी रजाई के
हर एक पहलू में वह हमें वो करने के लिए चाह देता है जो वह हमसे करवाना चाहता है। इसलिए वह देने के हमारे मन में इच्छा देता है और फिर वह हमें धन देता है। अमेरिका की सुसमाचारीय कलीसियाओं के पास जितना धन है वह समझ से परे है। जो आंकड़े मैंने देखे हैं वो बताते हैं कि अगर अमेरिका की सुसमाचारीय कलीसियाएं सारा धन बांटने के लिए दे दें तो पूरी दुनिया में किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं होगी। ये वे भी समझते हैं कि देना परमेश्वर की इच्छा है। वचन 5। मकदूनिया के विश्वासी इस बात को समझ गए कि परमेश्वर दाता है, वह योग्य बनाता है, लेकिन वे इस बात को भी समझ गए कि देना परमेश्वर की इच्छा है। आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? देना। वचन 5। वरन उन्होंने अपने आप को प्रभु को और फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी और अपने आप को सौंप दिया। पौलुस की प्रेरिताई, सेविकाई और विशेष तौर पर इस खंड में भेंट, यही विचार एक बार फिर अध्याय 9:13 में आता है। पौलुस इस बात को बार बार दोहराता है कि मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अध्याय 8 और 9 को पढ़ें, क्योंकि आप इसी बात को बार बार देखेंगे। पौलुस 9:13 में कहता है, क्योंकि इस सेवा के प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं तुम्हारी अधीनता और मसीह के सुसमाचार के अंगीकार के लिए। धर्म सिद्धांत के प्रवाह को देखना अत्यंत जरूरी है। मैं इस बात को इस वचन में बताऊंगा। कुरिन्थ के लोगों ने परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह को अनुभव किया था, उन्होंने मसीह के सुसमाचार का अनुभव किया था। कुरिन्थ के लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के बनाए रखने वाले अनुग्रह के अधीन कर दिया था जो उन्हें देने के योग्य बनाता है। यह है समर्पण, यह है उसका परिणाम, परमेश्वर की महिमा, जो कि असल में सभी विश्वासियों का मुख्य मकसद है। सही है, हम जो भी खाएं और जो भी पिएं, फिर जो भी करें, हमारा मुख्य मकसद प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की महिमा और आदर और स्तुति देना होना चाहिए। मकदूनिया के लोग समझ गए कि सब कुछ परमेश्वर का ही है। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। मकदूनिया के विश्वासी समझ गए कि सब कुछ परमेश्वर का ही है। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। हमारे शरीर भी उसी के हैं, हम एक मूल्य देकर खरीदे गए हैं, मेमने के लहू द्वारा खरीदे गए हैं, और हमारे शरीर भी अपने नहीं है, हम परमेश्वर के धन के भंडारी हैं और हमें इसका इस्तेमाल उसके मकसद के लिए ही करना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने खजाने स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे। जब एक और मकसद है जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस धन का इस्तेमाल करें, और वो यह है कि हम अपने आप का और अपने परिवार की सब जरूरतें पूरी करने के लिए इसे प्रयोग करें। एक बात जो बेहद दिलचस्प है वो यह है कि परमेश्वर हमें अपनी तनख्वाह खुद तय करने की क्षमता देता है। क्या वो नहीं देता है? वह हमें उस धन को देखभाल करने के लिए देता है जो वह हमें सौंपता है, और वह कहता है इसमें से कुछ धन ले लो और मैं चाहता हूं तुम मेरे इस धन का इस्तेमाल करो। मैं चाहता हूं तुम इस धन का इस्तेमाल अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए करो, या फिर अपनी कार की देखभाल करने के लिए करो। मैं चाहता हूं तुम ऐसा करो। यह सही है, लेकिन भंडारी होने के नाम पर एक और मकसद है। हम ये धन परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए आगे दे देना चाहिए। आप देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में कार्यरत है। मुझे पूछना है, क्या परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में कार्य कर रहा है या नहीं? क्यों मुस्लिम लोग कजाकिस्तान में स्कूल बना रहे हैं जबकि हम मसीही लोग नहीं बना रहे हैं? मैं जो चाहता हूं वह यह है कि मैं चाहता हूं जैसे पौलुस 9:15 में समाप्त करता है वैसे हम भी करें। परमेश्वर का उस दान के लिए धन्यवाद हो जो वर्णन से बाहर है, वह अनुग्रह का दान जिसकी वजह से मेरे जैसे नलायक पापी बचाए जाते हैं। यह अनुग्रह का दान जो हमें देने के योग्य बनाता है, और देना सिर्फ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। इस संसार में परमेश्वर को प्रकट करने और उस दूसरों को दिखाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह इस संसार में जीवित है और मसीह की देह में कार्य कर रहा है। देना परमेश्वर के अनुग्रह का दान है जो नलायक पापियों के लिए और हमें उदारता से और आनंद पूर्वक देने में इस पदार्थवादी संसार मुक्त करता है।